पिंकेश कुमार की आवाज़ में बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान सेकेंड पेपर भारतीय राजनीतिक आंदोलन अध्याय उदारवादी कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1918 भारत में उग्रवादी आंदोलन के कारणों की चर्चा करें। चूंकि उग्रवाद एक मन की भावना है इसलिए इसके आरंभ होने की तिथि निश्चित नहीं किया जा सकती है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में यह भावना उभरी तथा 1905 तक यह सटीक रूप से उभर कर सामने आ गई। 20वीं शताब्दी के प्रथम दो दशक भारत के मुक्ति संघर्ष में एक नए दौर के आरंभ के वर्ष थे। इन दशकों में भारत ने देशभक्तों ने यह समझ लिया कि मार्ग तर्क व बहस से आज़ादी नहीं प्राप्त की जा सकती, साम्राज्य से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष की राह अख्तियार करना जरूरी है। इस नवविकसित विचारधारा ने मुक्ति संघर्ष की राजनीति के उदार पक्ष को समाप्त कर उसे उग्रवाद की तरफ मोड़ दिया। रूख में इस परिवर्तन के कारण ही इस दौर को जुझारू राष्ट्रवाद का दौर कहा जाता है। उग्रवादी कांग्रेसी के कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर बंकिम चंद चटर्जी ने उन्हें पदों के भूखे राजनीतिज्ञ की संज्ञा दी। अरविंद घोष ने लिखा कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से बहुत दूर है और राष्ट्रवादी है तथा असफल रही है। उन्होंने कांग्रेस के उद्देश्यों को गलत, कार्यप्रणाली को अशुद्ध तथा नेताओं को ऐसे लोगों की संज्ञा दी जो ठीक नहीं थे। आगे लिखते हुए उन्होंने कहा है, हमें आजकल अंधे गड्ढों की ओर ले जाया जा रहा है, यदि अंधों द्वारा नहीं तो कम से कम एक अंक वालों द्वारा निश्चय ही। उग्रवादी आंदोलन के उदय के निम्न कारण बताए जाते हैं। पहला, कांग्रेस की उपलब्धियों पर असंतोष। अपने प्रारंभिक दशकों में कांग्रेस उग्रवादियों के प्रभाव से सरकार के साथ सहयोगात्मक रूप अपनाई, परंतु उनकी उपलब्धि नहीं के बराबर रही। इससे निराश होकर कुछ तरुण कांग्रेसी शांतिप्रिय तथा संवैधानिक ढंग के आलोचक बन गए तथा वे प्रार्थना याचना और प्रतिवाद के स्थान पर यूरोपीय साम्राज्य को समाप्त करने के लिए यूरोपीय ढंग अर्थात क्रांतिकारी ढंग अपनाने को बाध्य हुए। उग्र राष्ट्रवादियों के अनुसार कांग्रेस का राजनीतिक धैर्य केवल क्राउन के प्रति राजभक्ति राजनीतिक धर्म केवल क्राउन के प्रति राजभक्ति प्रकट करना है, उद्देश्य केवल अपने लिए प्रांतीय अथवा केंद्रीय विधान परिषदों में सदस्य प्राप्त करना और कार्यक्रम केवल अत्यधिक भाषण देना और प्रायः दिसंबर मास में कांग्रेस के अधिवेशन में उपस्थित होना ही था। तिलक कांग्रेस को मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों तक सीमित रखने के विरोधी थे तथा उन्होंने कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन तथा उसके सम्मेलनों को छुट्टी का मनोरंजन बताया। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय सम्मेलन वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी। तिलक तथा लाला लाजपत राय दोनों का मानना था कि कांग्रेस के पास कोई रचनात्मक कार्यक्रम नहीं है, अतः इस निराशा से उबरने के लिए उग्रवादियों ने उग्र तेवर अपनाते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को जन सामान्य से जोड़ा तथा ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोगात्मक तथा विरोधी रवैया अपनाया। तिलक ने तो यहां तक कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टर्राते हैं तो हमें अपने प्रयत्नों में सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा, बढ़ती हुई पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। पश्चिमीकरण के बढ़ते हुए प्रभाव के विरुद्ध इन तरुण भारतीयों ने देशी आंदोलनों को बढ़ावा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी तथा स्वराज का प्रतिपादन किया। स्वामी विवेकानंद ने नव वेदांतवाद के निर्भीकता तथा स्वतंत्रता की कामना को जन्म दिया। उग्रवादी नेताओं की बौद्धिक भावनात्मक प्रेरणा का स्रोत भारत तथा भारतीय वीरों की गाथाएं थी। तिलक ने इससे प्रेरित होकर गणपति तथा शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया तथा मराठा तथा केसरी नामक समाचार पत्र से अपने ओजस्वी विचार जन जन तक पहुंचाते थे, जिनसे उग्रवादियों को समर्थन प्रदान किया। टैगोर, बंकिम चंद चटर्जी, भारतेंदु आर्य की रचनाओं ने भी इनके विकास को योगदान दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय वेदांत से सरकार संसार को चकाचौंध कर दिया तथा अपनी प्राचीन परंपराओं को में नया विचार और आत्मविश्वास जगाया। अंग्रेजी राज की प्रकृति का ठीक ठाक मूल्यांकन तीसरा कारण। आरंभिक काल के नेताओं ने अपने अथक प्रयत्न अध्ययन तथा लेखों द्वारा लोगों को भारत में अंग्रेजी राज के वास्तविक स्वरूप का मूल्यांकन किया। दादाए भाई नौरोजी ने निष्क्रमण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किया। अत्यधिक खर्च, सैनिक असैनिक में ऊंचे वेतन, शासन के प्रति हुए व्यय, आयात एवं निर्यात की भेदभावपूर्ण नीतियां, भारत में औद्योगिकरण की उदासीनता एवं भारतीयों के ऊंचे ऊंचे पद पर नियुक्ति की भेदभाव ने भारतीयों के मन को उद्वेलित किया तथा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उग्र तेवर अपनाने पर बाध्य किया। चौथा, भारत की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में भारत की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति ने उग्रवाद के उदय को ज्यादा प्रभावित किया। 1896-97 तथा 1899-1900 में भीषण अकालों तथा महाराष्ट्र में प्लेग से लाखों लोग मारे गए। सरकारी सहायता कार्य में उदासीनता बढ़ती गई। इस संबंध में तिलक ने कहा, ये सहायक कम हानिकारक अधिक हैं तथा प्लेग हमारे लिए सरकारी प्रयत्नों से कम निर्यातदायी है। इधर भारत में अकाल पड़ रहा था, दूसरी तरफ 1902 में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। जनता का पैसा दरबार में पानी की तरह बहाया गया। इसे भारतीय जनमानस में उग्रवाद को समर्थन दिया। पांचवा, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। विदेशों में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में घटी घटनाओं ने नव तरुणों को प्रभावित किया। विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार ने इन्हें अंग्रेजी सरकार का मुखर आलोचक बना दिया। दूसरी तरफ जापान द्वारा रूस की पराजय तथा यूरोपियों द्वारा इटली की हार ने यूरोपीय जातियों की श्रेष्ठता को चुनौती दी। भारतीय तरुण व्यक्तियों ने यह समझ लिया कि यदि जापान रूस को तथा इथोपिया इटली को हरा सकता है तो भारत अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करने के लिए भी क्रांतिकारी आंदोलन कर सकता है। छठा, कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां। कर्जन का शासनकाल उग्रवादी विचारधाराओं को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कर्जन की कार्यप्रणाली अत्यधिक विवादास्पद रही। उसके संबंध में रमेश चंद दत्त ने कहा था, लॉर्ड कर्जन पक्का और जोशीला समाजवादी था। उसे स्वराज की भावना से कोई सहानुभूति न थी और न जनता के सहयोग में विश्वास था। उसका आदर्श था तानाशाही शासन। उसने भारतीय बुद्धिजीवियों को तिरस्कार किया तथा अंग्रेजों के सभी कार्यों को मन की भ्रांस निकालना बताया। कलकत्ता निगम अधिनियम, सरकारी रहस्य अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम तथा 1903 में दिल्ली में आयोजित दरबार आदि ऐसे विषय थे जिन्हें भारतीयों के मन में अप्रसन्नता भर दी। भारत में कर्जन का 7 वर्ष का शासन शिष्टमंडल, भूलो तथा आयोग, मिशन, ओमिशन एवं कमीशन के लिए प्रसिद्ध था। अतः कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां उग्रवादी आंदोलन के विकास में ज्यादा प्रभावित किया। 7वां, बंगाल का विभाजन तथा स्वदेशी मूवमेंट। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे घृणित कार्य बंगाल का पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में विभाजन था, जिसने उसकी घृणित मानसिकता को उजागर कर दिया। यद्यपि सरकार ने विभाजन को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से सुविधाजनक बताते हुए किया, परंतु यह स्पष्ट था कि विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था तथा इससे राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने वाली अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति काम कर रही थी। यह विभाजन बंगाल तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कड़े विरोध के बावजूद किया गया था। इससे स्पष्ट हो गया कि कर्जन तथा लंदन स्थित गृह सरकार भारत के लोकतंत्र की किसी प्रकार अवहेलना की तथा हिंदू मुस्लिम के द्वेष को उभारने के लिए किया गया। ब्रिटिश सरकार ने इन कार्यों ने भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर दिया तथा इसका विरोध उन्होंने स्वदेशी के विकास तथा विदेशियों को बहिष्कार करके किया। बंगाल विभाजन ने एक उग्र राष्ट्रवाद की आवश्यकता की धारणा को प्रबल कर दिया। अतः ऊपर वर्णित सभी कारणों से स्पष्ट है कि उग्र राष्ट्रवाद की उत्पत्ति समय तथा परिस्थितियों की मांग थी, जिसे विभिन्न कारणों ने प्रभावित किया। यद्यपि अतिवाद एक मानोभाव है, अतः इसके उत्पत्ति को स्पष्ट बता पाना कठिन है, परंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में प्रारंभिक होकर यह विचारधारा 1906 के बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलनों में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था। जंजर से जुड़कर इसने अपने महत्व को और बढ़ाया। दूसरा प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। स्वदेशी आंदोलन को शुरू करने का श्रेय 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितियों को जाता है। कांग्रेस तथा आमजन के जबरदस्त विरोध के बावजूद जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन धार्मिक आधारों पर कर दिया तो इस विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। स्वदेशी का लक्ष्य भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्था को ठोस बनाना था, साथ ही इसका उद्देश्य भारतीयों में देशभक्ति की भावना का विकास करना था। स्वदेशी आंदोलन के निम्नांकित कार्यक्रम थे, पहला, विदेशी माल का बहिष्कार किया जाए तथा लोगों को राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में भारत में बनी वस्तुओं को खरीदने का अनुरोध किया जाए। दूसरा, विदेशी वस्तुओं के स्थान पर चरखा से बनी सूत के कपड़े का इस्तेमाल किया जाए, इससे चरखा देश की जनता के आर्थिक आत्मनिर्भरता और इच्छा का प्रतीक बन गया। तीसरा, हथकरघा की बनी वस्तुओं को बेचने के लिए आयोजित स्वदेशी मेले एक नियमित विशेषता बन गए। और चौथा, विदेशी उपाधियों, नौकरियों तथा सेवाओं का बहिष्कार किया जाए। विद्यार्थियों से आग्रह किया जाए कि वे सरकार द्वारा संचालित स्कूल कॉलेजों को छोड़कर राष्ट्रवादियों द्वारा संचालित स्कूल कॉलेजों में पढ़ें। अर्थ प्रणाली के क्षेत्र में तेजी से स्वावलंबन की ओर बढ़ रही औद्योगिक प्रणाली में केवल दो ही उदाहरण स्वदेशी आंदोलन की भूमिका स्पष्ट कर देते हैं। ए, 1813 में पूरे भारतवर्ष में केवल 13 कॉटन मिल थे, जो 1906 में आते आते 203 हो गई। दूसरा, इसी प्रकार 1874 में भारत में केवल 4000 पावर लूम थे, जो 1906 तक आते आते 47000 हो गई। स्वदेशी आंदोलन के दरमियान घरेलू उद्योग तथा कुटीर उद्योग धंधों का तेज विकास हुआ, जिससे भारतीयों को रोजगार के क्षेत्र में अवसर मिले। इसी तरह शैक्षणिक क्षेत्र में 25 जुलाई 1906 को बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, 15 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज तथा स्कूल तथा देश के अनेक भागों में विभिन्न राष्ट्रीय प्राइमरी स्कूलों तथा सेकेंडरी स्कूलों की स्थापना हुई। वस्तुतः स्वदेशी का उद्देश्य भारतीयों में अपनी संस्कृति तथा देश के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाना था। स्वदेशी आंदोलनों में राष्ट्रवादियों का नारा था, बी इंडियन बाय इंडियन, अर्थात भारतीय बनो और भारतीय वस्तुओं का उपभोग करो। वस्तुतः स्वदेशी आंदोलन विभिन्न चरणों में निम्नलिखित प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष किया। पहला, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के उस विनाशकारी बिल का मुंहतोड़ जवाब दिया जिसका लक्ष्य भारत में देशी उद्योग धंधों को चपट कर देना था। दूसरा, स्वदेशी ने भारतीय बाजार में दुनिया भर से बनकर आए उपभोग की विदेशी वस्तुओं की बाढ़ को रोक दिया। चला, स्वदेशी ने भारतीय वस्तुओं के इंग्लैंड में पेनाल्टी या अर्थदंड लगाए जाने संबंधी भारत विरोधी नीति को करारा झटका दिया तथा भारतीय माल के इस्तेमाल का लोगों से आह्वान किया। इसी प्रकार स्वदेशी का लक्ष्य किसी व्यक्ति या वस्तु से कोई विरोध या भाव पैदा करना नहीं था, बल्कि यह भारत की औद्योगिक राष्ट्रभक्ति का जागरण था। वस्तुतः स्वदेशी प्रेम और आशावाद की शक्ति थी जिसके मूल आत्मा भारतीय वस्तुओं के हित में छिपी हुई थी। महामना पंडित मालवीय ने स्वदेशी के बारे में लिखा है, अगर कांग्रेस एक विशाल राजनीतिक आंदोलन था तो स्वदेशी देश का एक महान आर्थिक आंदोलन था।